الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین پروگرام تاریخی مقامات یعنی ہسٹوریکل پلیسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج جس ٹاپک پر جس مقام پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بڑی ضروری ہے تو آئیے ٹاپک پر جانے سے پہلے اس کی تھوڑی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں ناظرین یورپین کانٹیننٹ کے ساؤتھ ویسٹ پر موجود جزیرہ نما علاقہ آئبیریا جو کہ لانگ پہاڑی سلسلے کی وجہ سے باقی یورپ سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے اس پر آج کل دو ممالک ایک اسپین اور دوسرا پرتگال موجود ہے مسلمانوں نے اس ٹکڑے پر تقریباً 800 سال تک حکومت کی ناظرین اسلامک ہسٹری میں اس ملک کو اندلس کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے ساؤدرن ریجنز تک جا پہنچا تھا جب اس پر زوال آیا تو اس کی حدود کم ہوتے ہوتے گرنادا تک محدود ہو گئی تھی تاریخ اندلس اگر اندلس کی ہسٹری پر غور کرے تو وہ ہمیں مسلمان سائنسدانوں کی امیزنگ اچیومنٹس کی طرف دھیان دلاتی ہے اور اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بنیادوں میں دراصل مڈل ایجز کے مسلمان سائنسدانوں کا ہی ہاتھ ہے اور اسلامی اسپین کے سائنسدان بغداد کے مسلمان سائنسدانوں سے کسی طور پر بھی پیچھے نہ تھے اسلامی اسپین کی تاریخ کئی پیریڈز میں ڈیوائڈڈ ہے لیکن اگر سب کو ملایا جائے تو کل یہ 7 پیریڈز آف گورنمنٹ بنتے ہیں جو 711 عیسوی سے شروع ہو کر 1492 عیسوی تک نظر آتا ہے اس کے بعد اسپین مسلمانوں کے زیر حکومت میں نہ رہا اسپین کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو نارتھ افریقہ کی گورنری ملی اس دور میں اسپین کی پولیٹیکل اور اکنامیکل سچویشن بہت خراب تھی عیاش حکمرانوں نے غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت یعنی مائگریشن شروع کر دی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے جو انڈر میں نارتھ افریقہ تھا وہاں پناہ لینا شروع کر دی جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے جب معاملہ حد سے بڑا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کر افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے اسپین کے مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں سے آزاد کروانے کا پلان بنایا اور 92 ہجری میں معروف جنرل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین روانہ کیا افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹرز کا راستہ عبور کر کر اسلامی لشکر اسپین ساحل پر جبل طارق کے مقام پر پڑاؤ کیا طارق کی فوج کو وہاں 1,00,000 سے زیادہ فوج کا سامنا ہوا 3 روز تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار نہ دکھائی دیے 4th دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخ ہی خطاب کیا جس کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے لوگو جائے فرار کہاں ہے یعنی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی خطاب سے پہلے طارق نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ کر نکلنے کے باقی تمام راستے بند ہو جائیں چنانچہ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے سامنا کیا اور آخر کار فتح حاصل کر لی اس گریٹ بیٹل کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہاں اسپین کی عوام نے بھی یوم نجات منایا اس کے بعد اسلامی اندلس کا فیمس شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی ایک کے بعد ایک تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے اسلامی لشکر چند شہروں کو فتح کر کے وہاں غریب لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے تھے عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھ گئی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے طارق بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح شہر ہیہون کی تھی جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ رک کر کنٹری کی ایڈمنسٹریشن اور گورننس کی طرف توجہ دی گئی قرطبہ کو اندلس کا کیپٹل قرار دیا گیا آج سے 12 صدیوں پہلے قرطبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر دنیا کو ایک انگوٹھی فرض کر لیا جائے تو قرطبہ اس کا نگینہ ہے اسلامی اسپین کا دارالحکومت قرطبہ خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ بغداد سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر اسے بغداد پر سپیریورٹی حاصل تھی شہر کی آبادی 10,00,000 سے زیادہ تھی جس میں 20,00,000 سے زیادہ رہائشی مکانات موجود تھے اتنے یوز شہر کو پینے کا تازہ پانی کی فراہمی اس دور کا سب سے عظیم کارنامہ تھا कुर्तुबा में कुल 80,400 शॉप्स थीं, जिनमें से तकरीबन 20,000 सिर्फ बुक्स और उससे मुतालिका कारोबार के लिए थीं। कुर्तुबा यूरोप के दौरे जाहिलियत यानी डाक की, जिसके दौरान एक अजीम शान इल्मी मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता था। शहर में 3,000 मसाजिद, 80 कॉलेजेस, 50 हॉस्पिटल्स और 700 बाथ हाउसेस और ग्रेन यानी अनाज को महफूज रखने के लिए 4,300 वेयर हाउसेस थे। दूर दराज के इलाकों तक पक्की सड़कें थीं। रात के वक्त शहर में रोशनी का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। अंदलुस में मुसलमानों के फ़न तामीर का मुताला करते हुए ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि अरब फातहीन का ये रूल रहा था कि वो जहाँ भी फातह बनकर जाते वहाँ की लोकल सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स को अपना लेते और अपनी कंस्ट्रक्शन में उस इलाके की तर्ज़ तामीर को हमेशा शामिल कर लेते। इस तर्ज़ तामीर की एक झलक इसी शहर की एक जामा मस्जिद में नज़र आती है, जो जामा मस्जिद कुर्तुबा के नाम से पहचानी जाती है। इस मस्जिद को भी तारीखी हैसियत हासिल है और हमारी आज की एपिसोड का टॉपिक भी यही मस्जिद है। मस्जिद को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है, चुनांचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अकामस्सलाह, यानी अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और नमाज कायम रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा आने के बाद सबसे पहले मस्जिद का काम शुरू किया था। मदीने मुनव्वरा के करीब कुबा में आप चंद दिन ठहरे और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी। फिर जब आप मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ भी मस्जिद नबवी की तामीरात में सहाबा के साथ आप खुद भी इसकी तामीर में शरीक रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाकों में आबादियों में मसाजिद बनाने का हुक्म फरमाया है। आप फरमाते हैं, लोकेलिटीज़ में यानी आबादियों में, इलाकों में मस्जिद तामीर करें और उसे पाक व साफ और मुअत्तर रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बस्ती में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ मस्जिद को और अजान की आवाज़ को ना पाते तो फरमाते कि ये गैर मुस्लिमों की बस्ती है। ये इस बात की दलील थी कि ये बस्ती मुसलमानों की नहीं है। कुर्तुबा की जामा मस्जिद की तामीर का ख्याल अमीर अब्दुर्रहमान को सबसे पहले उस वक्त आया जब उसने अंदरून और बैरून साजिशों पर काबू पा लिया, यानी शहर के बाहर के मामलात होते हैं, जो आसपास के इलाकों के मामलात होते हैं उनको उनसे डील कर लिया, और फिर जो अपने शहर के अंदर के मामलात होते हैं, जो गवर्नेंस इशू होते हैं, लोगों के मामलात होते हैं, उन पर भी बड़ी अच्छी कमांड हासिल कर ली। तो फिर उसने अपनी वफात से सिर्फ 2 साल पहले ये काम शुरू करवाया। अमीर चाहता था कि मस्जिद को अमवी जामा मस्जिद दमिश्क का हम पल्ला बनाकर अहले अंदलुस व मगरिब को एक नया मरकज़ अता करे। यही वजह थी कि उसने तामीर की निगरानी खुद उसने संभाल ली। ये अजीम मस्जिद वादियुल कबीर दरिया पर बनाए गए कदीम तरीन पुल के करीब वाक़ है, जहाँ पहले एक गिरजा कायम था और जिसका एक हिस्सा पहले से बतौर मस्जिद मुसलमानों के पास था। बाद में मस्जिद को एक्सपेंड करने के लिए मसीहों से बाकी हिस्सा ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर वो मुसलमानों के एक्सट्रीम टॉलरेंस के बावजूद उसे सेल करने पर राजी ना हुए। लेकिन जब अब्दुर्रहमान का ज़माना आया तो उसने बहुत भारी कीमत अदा करके पूरा गिरजा ख़रीद लिया। कब्ज़ा हासिल करने के बाद उस जगह एक ब्यूटीफुल मस्जिद की दीवारें खड़ी कर दीं। तामीर में ज़ौक़ और शौक़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमीर ने 2 साल की मुद्दत में इस मस्जिद की तामीर पर 80,000 दीनार खर्च कर दिए। ये एक रेक्टेंगल शेप की मस्जिद है जिसकी दीवारें बड़ी कीमती और नफीस पत्थरों से बनी हैं। इसके मीनार 70 फीट बुलंद बनाए गए हैं। मस्जिद में 4,700 फानूस रोशन होते हैं, जिनके लिए 24,000 पाउंड्स एनुअली ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है। मस्जिद के सुतूनों की कुल तादाद 1,093 है, जो आला क्वालिटी के दीदा जेब मार्बल से तैयार किए गए हैं। सुतूनों के अपर साइड डबल आर्चेस बनाकर उनके हुसन को मज़ीद उजागर किया गया है, जो तमाम आलम इस्लाम में अपनी नौयत का एक यूनिक काम है। मस्जिद की तामीर में इस्लामी शान और शौकत देखने से ताल्लुक़ रखती है। 8वीं सदी ईस्वी में कुर्तुबा के अंदर ऐसी हसीन और जमील और मज़बूत इमारत का वजूद हैरत अंगेज़ बात होने के साथ साथ मुसलमानों के फ़न व महारत का क्लियर एविडेंस भी है, जबकि उस दौर में आम तौर पर इंजीनियर्स इतनी काबिलियत नहीं रखते थे। मस्जिद की तामीर में काश्तकारी का काम और रंग बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। इसे देखकर आज भी इंसान की आंखें हैरत ज़दा रह जाती हैं। एक गैर मुस्लिम मौर्रख ने यानी हिस्टोरियन ने इस मस्जिद के बारे में यहाँ तक लिखा है कि वट एवर द ह्यूमन आई हैज़ विटनेस दिस इज़ द मोस्ट चार्मिंग ऑफ दम ऑल एंड इट्स क्राफ्टमैनशिप एंड स्प्लेंडर आर नॉट टू बी फाउंड इन एनी ऑफ द एंशंट और मॉडर्न मोन्यूमेंट्स। यानी ये इंसानी आँख के सामने से गुजरने वाले तमाम मनाजर में सबसे ज़्यादा दिलकश मंजर है और इसकी महारत और अजमत कदीम या जदीद इमारात में कहीं नहीं मिलती। शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मस्जिद कुर्तुबा पर एक तवील नज़म लिखी जो अंदलुस में मुसलमानों के उरूज व जवाल में छुपे हुए राजों से पर्दा उठाती नज़र आती है और दौर हाजिर के मुसलमानों को एक्सीलेंट लेसन देती है। इकबाल लिखते हैं उस नज़म में, ए हरम कुर्तुबा इश्क से तेरा वजूद इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। बाद के आने वाले मुसलमान हुक्मरानों ने जामा मस्जिद कुर्तुबा को मज़ीद वसअत दी और वो तारीख़ी इस्लाम की अजीम शान मसाजिद में से एक ठहरी। अब्दुर्रहमान के बाद अमीर हश्याम अव्वल हुक्मरान बने तो उसने भी इस मस्जिद की तामीर और तौसी का काम जारी रखा। उसने तो अपने दौरे हुकूमत के 7 सालों में तमाम माल गनीमत का 5वां हिस्सा मस्जिद की तामीर पर ख़र्च किया। उस मस्जिद का अजीम शान मीनार जो 4 डायमेंशनल था उसी के ज़माने में तामीर हुआ। उस मीनार का शुमार वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है। नाज़रीन, रियलिटी तो ये है कि वंस इन अ सेंचुरी में बनने वाली ऐसी मस्जिद, ये मस्जिद इसकी तामीर में, इसकी तकमील में महीनों सालों नहीं बल्कि सदियां लगी, डेकेड्स लगे। हर अमीर अपनी हैसियत और ज़ौक के मुताबिक इस पर खर्च करता। हज़ारों मजदूरों ने इस मस्जिद की तामीर और आराइश पर अपना खून पसीना एक किया, तब जाकर इसे वो मकाम हासिल हुआ जो कम इमारतों को हासिल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुसलमानों का लुटा हुआ मकाम वापस अता फरमा और उस मकाम को ना मिल पाने के जो असबाब हैं, जो रीजंस हैं, हमें उनसे बचाए और तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप ये प्रोग्राम मिस कर जाएं या दोबारा देखना चाहें, शेयर करना चाहें तो दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।